इशिका पार्टी से अभिमन्यु के साथ लौट आई थी। वो ऊपर जा रही थी तभी उसे पीछे आशीष दिखाई दिया। इशिका ने आशीष को अपनी बातों के जाल में फंसाया और फिर उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इशिका आशीष से वो राज जानना चाहती थी जिसके जरिए वो आयशा से पैसे ऐंठ रहा था। पैसे मिलते ही आशीष के चेहरे पर चमक आ गई। वो नहीं चाहता था कि इशिका जैसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को वो खो दे। हाँ हाँ, तुमने पैसे भेज दिए हैं तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं तुम्हें वो राज बता दूंगा, वो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और बहुत जरूरी है इशिका, आशीष ने जवाब दिया। इशिका ने उसे देखकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है चलो मुझे बताओ। ये बहुत कीमती राज है, इसके लिए मैं जितने पैसे लूं वो कम है। सिंघानिया फैमिली इतनी अमीर है, वो भी मुझे काफी पैसे दे सकती है, आशीष ने लालच करते हुए कहा। इसका मतलब ये राज सिंघानिया फैमिली से जुड़ा हुआ है, इशिका ने आंखें छोटी करके पूछा। हाँ, ये राज तुमसे और सिंघानिया फैमिली से जुड़ा हुआ है, आशीष ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, एक्चुअली तुम वो रा। आशीष की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, आशीष अंकल और इशिका, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो आयशा थी जो अभी भी पार्टी ड्रेस में थी। वो अपने गाउन को संभालते हुए बिखरे बालों के साथ गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रही थी। आशीष आयशा को देखकर मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं, वो मैं बस अपनी प्यारी भांजी के साथ थोड़ा सा बिजनेस कर रहा था। मुझे तो आज पता चला है कि ये भी काफी पैसे वाली है। आयशा ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वो बोली, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे भिजवा दिए हैं। तुमने भिजवा दिए हैं पर मुझे और चाहिए, तुम्हें पता है ना मुझे जरूरत पड़ती रहती है, आशीष ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा। आयशा गुस्से में आशीष की तरफ देख रही थी। आशीष आगे बोला, पता है इसने मुझे 5 लाख रुपए दिए हैं और इसने और भी पैसे देने का वादा किया है। इतने पैसे तो तुमने कभी मुझे एक साथ नहीं दिए हैं। इसके साथ डील करना मेरे लिए फायदे का सौदा होगा, तो मैं इसी के साथ डील करने का सोच रहा हूँ। आयशा को आशीष पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वो उसका गला दबा दे। आयशा ने अपने गुस्से को काबू किया और शांत लहजे में बोली, मैं तुम्हें कल और पैसे भिजवा दूंगी। आशीष को उम्मीद थी कि आयशा उसे पैसे दे सकती थी। उसने तुरंत ही अपना पाला बदला और इशिका से बोला, मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मैं आयशा के साथ ही डील करूंगा। तुम अपने पैसों को उधार समझ लेना जो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। आयशा वहां से जाने लगी। उसने आशीष को अपने पीछे आने का इशारा किया। आयशा के आने की वजह से सारा खेल बिगड़ गया था और इस वजह से इशिका को गुस्सा आ रहा था। इशिका पैर पटकते हुए बोली, पैसे तो मैं उससे वापस हासिल कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए आयशा आशीष जैसे इंसान को पैसे दे रही है? जरूर कुछ बड़ी बात है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इशिका ने खुद को शांत किया और ऊपर बिल्डिंग में जाने लगी। आयशा ऊपर गई तो उसके पास नक्श का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। क्या हुआ नक्श, सब ठीक है ना, हम अभी तो मिले थे, आयशा ने हैरानी से पूछा। नक्श ने ही उसे वहां ड्रॉप किया था और इतनी जल्दी उसने वापस कॉल भी कर लिया था। नक्श ने जवाब में कहा, राधिका आंटी दिल्ली से है ना, क्या वो वहां मित्तल फैमिली को जानती हैं? मित्तल फैमिली, आयशा ने हैरानी से दोहराया। नक्श जवाब में बोला, हाँ मित्तल फैमिली, मित्तल फैमिली के कंपनी के हेड का नाम राघव मित्तल है। मुझे अभी अभी पता चला है कि अभिमन्यु चाचू उनके साथ कोई डील करने वाले हैं, बस सिग्नेचर नहीं हुए हैं। अभिमन्यु का नाम आते ही आयशा ने तुरंत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। आयशा ने पूछा, अच्छा फिर तुम्हें उनसे क्या काम है? मैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, चाचू की उनसे बात नहीं हुई है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हमारी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी, नक्श ने जवाब दिया। ठीक है, अभी मॉम सो रही हैं, उनके उठने के बाद मैं उनसे बात करती हूँ, आयशा बोली और फिर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया था। नक्श से बात करने के बाद आयशा फिर से आशीष को लेकर परेशान हो गई। आयशा मन ही मन बोली, आज तो मैंने आशीष को देख लिया था और उसे चुप करवा दिया था, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा, मुझे उसका मुंह बंद करवाने के लिए एक साथ पैसे देने होंगे। डैड से इतने पैसे मांगूंगी तो उन्हें शक होगा, मुझे जल्द से जल्द नक्श से शादी करनी होगी। डॉक्टर मर्चेंट से भी बात नहीं हो पाई, अब मित्तल फैमिली से कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। आयशा सीढ़ियों से जा रही थी क्योंकि लिफ्ट बिजी थी। राधिका का रूम 3rd फ्लोर पर था तो वसुधा जी का 4th पर। इशिका भी वही जा रही थी, इत्तेफाक से वो दोनों साथ ही थी, लेकिन थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था उसके बाद से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। इशिका और आयशा चल रही थी तभी उन्हें किसी के बहस करने की आवाज आई। वो दोनों माँ बेटे थे जिसमें लड़के की उम्र लगभग 30 के आसपास थी और उसकी माँ 50 साल के करीब थी। उस लड़के की माँ ने चहकते हुए कहा, तुम्हारी सेकंड वाली आंटी का कॉल आया था, उसने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है बेटा, तुम्हें उस पर जाना चाहिए, लड़की बहुत अमीर है समीर बेटा, और इससे तुम्हारा फ्यूचर सुधर सकता है। उसके बेटे का नाम समीर था। वो नाराजगी जताते हुए बोला, मॉम आप ये क्या कर रही हैं, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी बीमार है लेकिन सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगी, मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं कियारा से बहुत प्यार करता हूँ। समीर की बात सुनकर उसकी माँ ने मुंह बनाया, वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोली, सर्जरी हो तो जाएगी, लेकिन सर्जरी के लिए डॉक्टर ने 50 लाख रुपए बताए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, उसका अलग से खर्च आएगा। हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे बेटा? समीर ने कुछ पल सोचते हुए कहा, ठीक है फिर हम ऐसा करते हैं, घर बेच देते हैं। वैसे भी वो घर कियारा के हिस्से की प्रॉपर्टी से आया हुआ है। उसकी माँ को समीर का आइडिया अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत नामे सिर हिलाकर बोली, ऐसे कैसे घर भेज दे? अगर घर बिक गया तो कोई तुम्हें लड़की देने के लिए तैयार नहीं होगा। देखो तुमने अपनी जिंदगी के 2 साल उस बीमार लड़की को दिए हैं, बदले में इतना तो बनता है। अपनी माँ की बात सुनकर समीर चौंक गया। वो बोला, ये सही नहीं है मॉम, उसने मेरे लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया। ये तो उसकी फैमिली अच्छी थी जो उन्होंने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसे दे दी, उसका कोई नहीं है। मैं उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने थोड़ी ना उसे रिश्ते तोड़ने के लिए कहा था। उसके बाप को तुम जैसा एवरेज लड़का मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसकी भी गलती है, उसे उन्हें मनाने जाना चाहिए था, समीर की माँ ने कहा। फिर वो अपनी आवाज थोड़ा नीचे करके बोली, मेरी बात गौर से सुनो और प्रैक्टिकल होकर सोचो। हम उसे यहाँ से ले जाते हैं और बोल देते हैं कि डॉक्टर ने सर्जरी करने से मना कर दिया है, कुछ दिनों में वो मर जाएगी, तो तुम उस अमीर लड़की से शादी कर लेना, उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर भी सेटल हो जाएगा। तुम सोच ही नहीं रहे हो? समीर ने थोड़ी देर सोचा। पहले वो कियारा के साथ रहना चाहता था, लेकिन अचानक उसका मन बदल गया। वो बोला, ठीक है तो फिर हम कियारा को यहाँ से डिस्चार्ज करवा लेते हैं। हालांकि वो अपनी तरफ से काफी धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल शांत था और इस वजह से उनकी आवाज थोड़ी तेज आ रही थी। इशिका और आयशा दोनों ही उनकी बातें सुन चुकी थी। आयशा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इशिका को गुस्सा आने लगा। उनकी बातों से यही लग रहा था कि कियारा नाम की लड़की का पति और सास दोनों ही काफी स्वार्थी थे।
पता नहीं कौन बदकिस्मत लड़की है जो इन्हें झेल रही है। जो भी है, बेचारी काफी तकलीफ में लग रही है, इशिका ने अपने मन में कहा। तभी उसकी नजर एक रूम के आगे खड़ी लड़की के ऊपर गई। उसने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। वही कियारा थी जो चेहरे से ही काफी बीमार नजर आ रही थी। खिड़की को देखते ही तुरंत उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। समीर जल्दी से उसके पास जाकर बोला, कियारा बेबी तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? कियारा ने नम आंखों से उसे देखा और सुबकते हुए बोली, मेरे डैड को कॉल करो, वो मेरे इलाज के पैसे दे देंगे। कियारा की बात सुनकर उसकी सास हंसते हुए बोली, बहू हमने उन्हें कॉल किया था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये समीर का नंबर है, उन्होंने कॉल कट कर दिया। ऊपर से उसे ब्लॉक भी कर दिया था। उन्होंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, वो नहीं आएंगे तुम्हारे इलाज के पैसे देने के लिए। कियारा ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। वो इतनी कमज़ोर थी कि दीवार को पकड़कर खड़ी थी। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और बोली, ठीक है फिर मेरे भाई को कॉल करो, वो मेरी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। समीर ने उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने कियारा को दोनों कंधों से पकड़ा और समझाते हुए बोला, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने ऐसी हालत में तुम्हें फ़ोन इस्तेमाल करने से मना किया है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। माँ आप डॉक्टर से बात कीजिए, मैं किया को घर ले जाना चाहता हूँ। कियारा ने तुरंत नामे सिर हिलाया और समीर के हाथ छटक कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। वो इतनी कमज़ोर थी कि आगे चलकर लड़खड़ाने लगी और आयशा के पैरों में जा गिरी। वो आयशा के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे भाई को कॉल कर दो, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आयशा को उसकी बीमारी या फिर इतनी परेशानी में होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपना पैर कियारा के हाथ से अलग किया और काफ़ी बेरुखी से कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने एक लड़के के लिए अपनी फैमिली से रिश्ते तोड़ दिए, तुम्हें क्या लगता है कि अब वो तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहेंगे? तुम जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए, अब रहो अपने उसी सो कॉल्ड प्यार के साथ। आयशा ने उनके मामले में दखलअंदाजी नहीं की। ये देखकर माँ बेटे ने राहत की सांस ली, लेकिन कियारा के इस तरह अजनबी से मदद मांगने की वजह से वो गुस्सा भी हो गए थे। समीर कियारा के पास गया और उसे उठाते हुए गुस्से में बोला, कियारा मित्तल तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है कि अब तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला? तुम्हारी फैमिली हम हैं, तो हमारे साथ रहने की आदत डाल लो, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो। कियारा के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी। हालांकि उसने अपनी फैमिली से रिश्ते तोड़कर गलत किया था, लेकिन अब वो उनसे मिलना चाहती थी। वो उन माँ बेटे के साथ तो बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी। कियारा नन्ही मन जानती थी कि अगर वो वापस उनके साथ गई तो पक्का मर जाएगी। वो वहां खड़ी आंसू बहा रही थी और अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, रुको। वो इशिका थी जो मदद करने के लिए आगे आई थी। इशिका कियारा के पास आई और सख्ती से बोली, मुझे मोबाइल नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करूंगी। कियारा ने हाँ में सिर हिलाया, खुशी से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी समीर की माँ ने चिल्लाकर कहा, ए लड़की कौन हो तुम जो हमारे घर के मामले में अपनी टांग अड़ा रही हो? अभी कह रही हूँ पीछे हट जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समीर उनकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। वो शांति से बोला, देखो तुम्हारे कॉल करने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं नहीं चाहता कि उनके मुंह से इनकार सुनकर तुम हर्ट हो। नंबर दो मुझे, इशिका ने सख्त अंदाज में कहा। कियारा ने उसे नंबर बताया। इशिका ने कॉल किया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, हेलो, मैं राघव मित्तल बोल रहा हूँ। इशिका ने तुरंत कहा, कियारा मित्तल बहुत बीमार है, उसे सर्जरी की जरूरत है जो कि काफी कॉस्टली है। राघव मित्तल जो कॉल के दूसरी तरफ था, वो कियारा की हेल्थ के बारे में सुनकर परेशान हो गया। उसने तुरंत पूछा, कहाँ है वो? इशिका ने उसे हॉस्पिटल का एड्रेस दिया तो वो बोला, मैं गोवा आया हुआ हूँ किसी काम के सिलसिले में और अभी फ्री भी हूँ, आप उसका ध्यान रखिएगा, मैं अभी वहाँ आता हूँ। कॉल पर बात हो जाने के बाद इशिका समीर और उसकी माँ की तरफ पलटी और बोली, जब तक कि इसका भाई नहीं आ जाता, कोई भी इसके पास नहीं आएगा। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। उसके धमकी देने पर समीर और उसकी माँ डर गए तो वहीं आयशा हंसते हुए बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत महान निकली। वैसे तुम्हें बता दूं कि एक बार इसकी फैमिली यहाँ आ गई तो वो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे कि तुमने उन्हें यहाँ बुलाकर उनका टाइम खराब कर दिया। तुम जैसे इमोशनल लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वैसे तो मुझे बहुत काम है लेकिन तमाशा देखने में मजा आएगा। आयशा वहां से जाने के बजाय वहीं खड़ी होकर उसके भाई के आने का इंतजार करने लगी। आयशा की किस्मत इतनी खराब होगी पता नहीं था। समटाइम्स मुझे लगता है कि वो नक्श के काम बिगाड़ने के लिए ही उसकी जिंदगी में आई है। वो जिस राघव मित्तल से इतना डेस्परेटली मिलना चाहता है, उसी की बहन के साथ में उसने ऐसा सुलूक किया। चलो देखते हैं कि राघव मित्तल के आने पर क्या होता है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।